आदि दे दू। और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो लभते पराम पराभक्ति लाभ हो सकता है, किंतु जरूरी नहीं है कि होगा ही। साधु संग के ऊपर में सब कुछ है, साधु संग सर्वशास्त्र है, बिना साधु संग के नहीं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ऐसे रसिक सत्सज्ञ वैष्णव का संग नहीं होगा, तब तक गीता का ये सब समझने की नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इसमें केवल आसक्त ही है, आप लोग भगवान को कभी निराकार मत समझेंगे। और जिनको उपदेश देने वाले कहते हैं कि हम अपने को अंगुली दिखला के कहते हैं, वो है ना, वो भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं माम एव जे प्रसन्न। माम माम माने किसको, यदि वो अव्यक्त है तो माम किसको कह रहे हैं, मुझे, मैं कौन हूं, कृष्ण हूं। अंगुली दिखला करके जहां पर करें कैसे श्याम सुंदर हैं, ऐसे लोग को कहते हैं निराकार गीता निराकार है, ऐसे ना ऐसा नहीं, गीता का उपदेश नहीं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अंत में जब अर्जुन ने कहा मैंने सब आपके उपदेश सुने, अब कृपया हमको इनमें से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी आप कृपा करके मुझे बताई मेरे लिए क्या। भगवान प्रवृत्त हो गए, प्रवृत्त होकर के कहें देखो तुम हमारे बड़े बुद्ध और मैं तुमसे सर्वभूषी तमम सुर में परमम बचा, कुह्यतर हो गया, कुह्यतम भी हो गया, अब यहाँ पर सर्व कुह्यतम परमम बचा, अब इसको बतला रहे हैं। कहाँ बतला रहे हैं, 65 श्लोक में गीता के 18 में 64 या 65 उसमें बतला रहे, अंतिम में बतला रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु मां एव सत्यम प्रिय। अर्थात मन मनाप ऐसा करो, चित्त हमारे में लगाओ। कैसे चित्त लगाओ, कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में, गीता सूत्र है, विस्तृत ग्रंथ नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त उपदेशों को मुस्तित्व और वेदों का भारतीय वाक्यमय का ये सूत्र है। जैसे वेदांत सूत्र है इसको कम मत समझेंगे, इसलिए गीतो उपनिषद इसको कहा गया। उसमें कहते हैं मन मनाप हो, अर्जुन यदि सचमुच तत्व हमारा प्यारा है मैं तुमको उपदेश देता हूं, मन मना भव अपने मन को हमारे में दे दो, हमारे में लगा दो, हमारे कैसे, इसी के लिए श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा इसका उदाहरण खोजने के लिए। उद्धव जी को कृष्ण भेज रहे हैं ब्रज में, वो ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं हमारे लिए, विशेष करके ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे दैक्त दई हता, मन मनस का मत प्राणा मदर्थे दैक्त दई हता मामेव दैतम प्रेष्टम आत्मानम मनसा गता। मन मना ये जो है इसकी व्याख्या बता, मन मनस का वो अपने मन को दे दिया, मनसा गता मन को भी हमारे अंदर में दे दिया है, कैसे दिया है देखेंगे इसको समझ पिता। गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं 35वें अध्याय में देखिए श्रीमद् भागवत का वो प्राण है, पंच प्राण में मुख्य प्राण है, गोपियां कैसे हो गई, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है। कैसी हो गई है, मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, इससे बहुत अपना वक्तव्य समाप्त कर। राधा जी एक भ्रमर को देखा और भ्रमर को देख करके कहती हैं, सोच रहे हैं ये कृष्ण का कुछ काले का काला दूसरा है, सचमुच में अंतर बाहर काला, अपने होठों पर ये कुमकुम कहां से लगा कर और अधिक मान हो गया। उद्धव जी बहुत से दूर से खड़े हैं देख रहे हैं, नंद बाबा का ही प्रेम देख करके सोचा जाए था पहले जो कृष्ण को छोड़ करके मैं कैसे ब्रज में जाऊंगा, तिलों का संग पा करके कृष्ण को भूल गए, देखा जो कृष्ण तो संपूर्ण रूप में ही है, वो तो मथुरा में तो है ही नहीं और है तो आंशिक रूप में कला रूप में वहां संपूर्ण रूप से देखा तो क्यों निकल। राधा जी कह रही हाँ मेरी दूर शरीर का कोई दोष, किससे बात कर रही है, देख रही है भ्रमर है उससे बात, वो भ्रमर राधा जी के चरणों के साथ चारों तरफ में घूम रहा है, मानो समझता है कि ये समझ, वो समझती है कि ये कह रहा है हमको कृष्ण ने भेजा, आप उनसे सुलह मांग, आप उन पर माफ हो, वो निर्दोष है, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। कैसा सुंदर उसने वर्णन किया है, रसिक ही वृद्ध है, रसिकों का सिर्फ बुद्धि होती है, विशेष करके जब उन्होंने कहा मृगयु को अपंतम दर्द नहीं लुप्त शर्मा, इस श्लोक में तो चरम मद कर एकदम भूल गई, खोजते खोजते कृष्ण को तन्मय होकर के अपने को समझा कि मैं ही कृष्ण हूं, किंतु ये वो ब्रह्मवाद नहीं, ये प्रेम का एक विकार है। एक छोटी सी लघु कथा यहां पर मैं उपस्थित करता हूं। ब्रज में कोई नवेली अभी दो चार दिन से विवाहित होकर के कुछ है, कृष्ण गोचारण करने के लिए सवेरे जा रहे हैं अपनी कथाओं के साथ, चारों तरफ में हल्ला हो गया कि कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे और की तो बात क्या, बच्चे बूढ़े बूढ़ी बच्चियां लड़कियां किशोरियां विवाहिता अनविवाहिता यहां तक कि अंधे भी अंधे का हाथ पकड़ करके कृष्ण का ये गोचारण गमन लीला दर्शन करने के लिए चले। कोई अपने दरवाजे के पास में खड़ी हो गई नवेली, कोई खिड़कियों से झांक रही, कोई दरवाजे पर कांच करके खड़ी, इस तरह से ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जो निकल करके दरवाजे पर ना आ गया हो और कृष्ण के उस मधुर रूप का दर्शन। मधुभागत में इसका वर्णन सुंदर वर्णन किया गया, वही आखिर धन्य है जो कृष्ण को इस समय कृष्ण और बलदेव के साथ में जाते थे, अथवा बलदेव जी के पीछे पीछे जो कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं, इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे मठ में इन्होंने की थी, जो कृष्ण बलदेव नहीं कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले मधुर बंसी बजाने वाले जो कृष्ण है जो जा रहे हैं, हंसते हुए मुख से बुखार मिश्रती तिरछी नजर से गोपियों की तरफ में वो देखते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया उसका जीवन और उनकी आंखें न रहने के बराबर, उनकी आंखें व्यर्थ है। गोपियां देख रही हैं, नवेली की उसकी सास कह रही है देख अभी आपको मत जाना, तो मैं तो चाहूंगी दर्शन करने के लिए उसका, मत जाना काला भुजंग है बड़ा विषधर है काट देगा तो भी विष नहीं करेगा, मत जाना खबरदार, मैं इसका बतला रहा हूं मन मन अभाव कैसे मन मन भाव होता है इसका एक झांकी देने के। तो वो कह रहे हैं مت جانا. کہتے تو تمہاری لڑکی جو جا رہی ہے, لڑکی جا رہی ہے تو تم کیوں جائے, تم مت جانا. ارے اس کی بہو بھی تو جا رہی ہے. میں کہتی ہوں ہماری بات, میں پریپکو ہوں, میں اس بات کو سمجھتی ہوں, کبھی بیچ نہیں اترے گا جیون پر, نہیں تو میں تو جاؤں گی, میری بات نہیں تم آتی. اب تم کیوں جا رہی ہو بوڑھی ہو کر, کسی طرح سے نہیں مانی. وہ آگے دن تو بوڑھی پڑ گئی آگے, کہ تم جانا میں ابھی آ رہی ہوں, اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلتی اور دروازے پر جا کر کے کھڑی ہو گئی. وہ نہیں تو کرشن بانسری بجاتے تھے, چلی جا رہے سکھا لوگ بڑا ہاتھ وہ ٹھیک وہی کی پرتیمورتی کرشن بڑے ہی سندر سبھاونے رسی کرشن, آنکھیں ان کی مانو کچھ کھوج رہی ہیں. کس کو کھوج رہی ہیں؟ کچھ نویلیوں کو ہی کھوج رہے ہیں. نظر گئی ان کی, دیکھا ہوں, اور وہ تنمے ہو کر کے وہیں سے دیکھ رہی ہے کرشن. کرشن نے سوچا جس کی منوکامنا پورن ہونی چاہیے, سب کی منوکامنا وہ کرشن پورن کر سکے. بس وہیں سے ایک بچڑے کو بچکا دیا, اس کا پونچھ تھوڑا سا موڑ دیا اور سندر ہنس سا بچڑا کودتا ہوا ایک دم. ایسا کرشن نے ڈائریکشن اس کو دیا جیسے ایک دم ٹھیک دروازے کے پاس میں پہنچا, اور جس کرشن اس کے پیچھے سے ہی مانو اس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. بس جھٹ وہاں پر گوپی ایک دم تن ہو کے کھڑی تھی کرشن کو دیکھ رہی. کرشن نے اپنی بنسری دی اور اس کے چبک میں تھوڑا سا سپرش کرا, اس کے طرف میں ایسی منموہن دشٹی سے دیکھا. وہ درشٹی اس کے بھیتر میں جا کر اس کے من کو اپہرن کر دیا, اور لے کر کے ساتھ ہی ساتھ میں کرشن ادھر سے چھلانگ مارتے ہوئے چلے گئے. پر گوپی رہی, اس کا شریر رہا من کرشن کے ساتھ, کھڑی کی کھڑی رہ گئی. کرشن چلے گئے, دھوتی اڑنا بند ہو گیا, سب لوگ جہاں تہاں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. گھنٹوں بیت گئے, وہ دروازے پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ساتھ میں کہا تھا نا میں نے چل جائے گا بھی, چلو 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 ہدایا سبھی گھر میں. جی اس کا من تو ہوش میں نہیں ہے, جاؤ گھر سے کوئی مٹکا لے آؤ دہی کا اور سمن سن کرو, ابھی تو جاؤ لے آؤ. کہا تو دیا تو من تو تھا نہیں, گھر میں گئی اور مٹکے کے بدلے میں سرسوں کا مٹکا اٹھا گئی اور دہی کا وہ لے کر کے منتھن منتھن اور اسی رائی کو متنے لگے. دودھ ہے دہی ہے کیا ہے اس کو ایک جان, کیونکہ چت اس کا نہیں, من منا بھاؤ کرشن کے ساتھ. ساتھ ارے یہ کیا کر رہی, اس کو دوسرا ایسا کوئی کام دو جس کی اس کا لوٹ آئے, بس ہوش میں آ جائے. انہوں نے اس کو کہا ارے پانی لاؤ, تو پانی بھر لاؤ. ایک کھڑا دے دیا اس کے اوپر میں, ایک گھڑا دے دیا, رسی تھی موتی سے دے دی, اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی گود میں دے دیا. جاؤ کنواں کچھ دور کنویں پر گئی, بچے کو اتارا, کھڑے کو بھی اتارا, رسی بھی نکالی اور اس میں پھانس بنایا, اس میں باندھ کر کے ایک کھڑے میں, اور اس کو نیچے گرائے گی پانی کھڑے. من تو ہے نہیں, من منا بھاؤ ہے. اس نے اس رسی کو لے کر کے اس بچے کو جو بچھایا تھا کھڑا سمجھ کر کے اسی کے گلے میں لے کر دو اور کش میں لگی. گوپی ہنساری یہ دیکھو 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 کیا کرے, ارے ارے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. کوئی کہتی ہے اس کو بھوت لگ گیا. آج جو جانتی ہیں اس وشے کو کہ کرشن چیز کا چت ہر لیتے ہیں ایسے ہی سکتے ہیں, انہوں نے کرشن اس کو بھوت نہیں لگا, اس کو نند کا بھوت لگا. سمجھ گئی, اس کو کہتے ہیں من منا بھو. نہ جانے کب تک ہوش میں آئی کہ نہیں آئی, اس کے بعد میں ورنن تو نہیں کیا ہے گوپیوں, हमारे गोस्वामी ने, किंतु ये उदाहरण दिया ये मनमना भव। यदि ऐसा मन कोई कृष्ण में चित्त दे दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, विशेष करके गोपियां रूपी गुरु यदि मिल जाए, कहीं ललिता भी शाखा मिल जाए, तो ऐसा तो गीता का यह चर्म जो उपदेश है मनमना भव ये उस अर्जुन ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु ये ऐसा संभव पर नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कैसे हम ऐसा मन मना भाव अपने मन को दे देंगे, तो युद्ध आप कहते हैं युद्ध भी करो और हमारा स्मरण भी करो, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मद भक्तो सब द्वितीय रूप में उन्होंने कहा। अच्छा और थोड़ा सा यहाँ पर को सभा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन प्रस्थापना अथवा योग से हम अनन्न चिंतयंतो मांगे जन जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योग क्षेम वाहम्यहम। जो लोग अभी उपभोग तो है भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तत्व ज्ञान भी उनका पहला जो हो गया है वो हो गया है, दूसरा कुयतर भी उनका हो गया है, उससे ऊपर उठ गए हैं कुयतम भी हो गया है, अब सब कुयतम में आने वाले हैं, अभी हुआ नहीं, अभी भावावस्था तक प्राप्त, जैसे बिल्व मंगल का हुआ, बिल्व मंगल को साधक कहा, उसके नीचे वाले अभी साधक नहीं है, विशेष करके राधा निका। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदिक भक्ति और एक होती है रागानुगा। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इस रागानुगा प्रेममय भक्ति को देने के लिए जगत में आए, गीता का भी वही उद्देश्य है अंत में, किंतु सूत्र रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया, इसलिए यदि जिसका मन ऐसा नहीं हुआ कि हम उनमें कृष्ण में अपने चित्त को दे सकें, तो इतना तो कर सकते हैं कि भगवान का सततम कृतयंतो मन के जनो पाद्युपास दे, अपने भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उनका कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जैसे बिल्व मंगल, किंतु जैसे बिल्व मंगल जी ने किया ऐसा नहीं हो तो और कहते जी कैसे। हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन, बहुत दिनों की बात गीता का अनुशीलन करते थे और गीता के समस्त विषयों पर उपदेशों पर बड़ा उनका बहुत ही श्रद्धा थी, उसके टीकाकार भी हैं गीता के। उन्होंने अब मैं समाप्ति करना चाहता हूँ, दो चार पांच मिनट लगेगा। तो अर्जुन जी जब गीता के श्लोकों की का अर्थ और व्याख्या करते हुए इस श्लोक पर आए, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभिजुक्तानां योग क्षेम वहां जन। जो लोग सब समय अनन्य चित्त होकर के अपने समस्त सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम ब्रज होकर के स्वरूपतः और सिद्धांततः सब कर्मों को जो हमने छोड़ दिया, एक तो होता है कर्मों में आसक्ति छोड़ करके कर्म करें एक ये त्याग, और एक होता है स्वरूपतः अर्थात आसक्ति और स्वरूपता भी उसको छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये स्वरूपतः और फलता दोनों छोड़ दिया। और लोग हैं जिसको उन्होंने निष्काम कर्म इत्यादि किया, तो यहाँ पर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वरूपता के कर्मों को छोड़ दे तो भी कुछ न कुछ खाने पीने इत्यादि के लिए तो करना पड़ेगा, किंतु उसको भगवत उपासना में बना करके करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं मनमना मद भक्तो। कैसा जैसे अर्जुन जी कर रहे हैं गीता का, करते करते जब ये श्लोक आया जो अनन्य रूप से हमारी भावना करता है और उसको और कर्मों के लिए समय नहीं मिल पाता है, खाने पीने इत्यादि के लिए योग और क्षेम जो चीज नहीं है उसको दे देना आवश्यक, और जो चीजें हैं उसकी रक्षा करना ये क्षेत्र, मैं स्वयं अपने कंधे पर धो करके पहुंचाता हूं, क्योंकि आज पचासों वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए और भगवान का भजन करते हुए आज तक वो करके नहीं गए, हो सकता है किसी के माध्यम से कोई चीज पहुंचा दें ये तो मैं मान सकता हूं, वो करके उन्होंने एक लाल काली से स्याही से उस पर उन्होंने काट दिया और काट करके चले गए दीक्षा में। उस दिन दो पहर या तीन पहर तक उनको कुछ भी दीक्षा नहीं मिली। लौट करके घर में तीन प्रहर पर इसी के बीच में दो पहर में एक छोटा सा सांवला सलोना सितंबर का कपड़ा पहने थे साधारण बालक जैसा एक पंगी पर कहते कांधे पर रखते हैं दोनों तरफ में बड़ी बड़ी टोकरियों में चावल दाल आटा घी मैदा दूरा जो सब सामान होना चाहिए सभी सामान दोनों पर भरा हुआ और छोटा सा बालक किशोर 13 14 वर्ष का अधिक सभी बाक्स को बहुत जंग पसीने से लथपथ हफ्ता हुआ दरवाजे पर आया मैया दरवाजा खोलो बड़े सुरले कंठ से बोला उनकी पत्नी ने अजी कौन है मैं पंडित जी का शिष्य हूं उन्होंने कुछ सामान भेजा है तो उसने खोल दिया एक तो कुछ कपड़े तन थकने के लिए नहीं थे ब्राह्मण देवता ही उनके कपड़े पहन करके चले गए फटा पटा कपड़ा उन्होंने अपना पीताम्बर खींच दिया उसके ऊपर और दरवाजा खोल दिया उन्होंने दरवाजा खोलने के बाद दिए लेकर के पीतक में पसीने से मुख को सूखा हुआ क्लांत हो गए हैं अरे बेटा वो पंडित जी कहां पंडित जी भी भरी रह गए पुलिस से बेटा तू ले जाकर के हमारे घर में दे आ मैं आ रहा हूं भाग तुम्हारे कंधे पर छोड़ दिया ये तो बड़े निष्ठुर आज तक मैं उनको तो निष्ठुर नहीं जानती मैया क्या कहूं केवल इतना भार ही नहीं उन्होंने बुलाया मेरे आने में कुछ विलंब हो गया और विलंब होने के नाते मुझ पर बिगड़ गए और अपने नाखूनों से मेरे पीठ में गिर दिया देखा था कुछ में ऐसे मानस रक्त उत्पन्न हो रहा बाल एकदम उसके आंखों में आंसू आ गए बोली इतने निष्ठुर पंडित जी आज आते हैं तो मैं देखती हूँ इस बच्चे को अपने आधा सामान वो खुद ही ले सकते थे दूसरे शिष्यों को बुला लेते सब इस पर छोड़ दिया और उसको भी ऐसा बकोट दिया उन्होंने नोच दिया अच्छा ठीक है बेटा आने दो तुम बैठो मैं अभी रोटी बनाती हूँ खा पी करके जाना ऐसे मत चला जाना अभी बैठो ये बस साथ साथ में उसको चावल और दे करके और रोटी बनाने के रोटी घर में गए और इतने में थप थप की आवाज भी पंडित जी ने कहा दरवाजा खोलो ये कुछ उड़ती हुई कुछ बिगड़ती हुई पुरुष में भरी हुई पंडित जी को दो चार चली कटी सुनाएगी दरवाजे पर पहुंच दरवाजा खोला पंडित जी आए उन्होंने उलाना दिया अरे इस बच्चे के ऊपर इतना हाथ नहीं दे दिया तुम नहीं ला सकते थे अपने तो नहीं खल्ले ऐसे ही हाथ माते हुए चले आए और बच्चे पर सब हाथ दे दिया और ऊपर से आपने इससे काट दिया अरे कौन बच्चा कहाँ सामान कहाँ क्या मुझे कुछ पता नहीं है तो पता भी नहीं है अरे बच्चा तो वहीं पर बैठा हुआ है तो चलो तो जरा बच्चा देख गया देखा खोजते ढूंढते 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 कहीं मैं कहा जरा वो लाना तो गीता लाया उसके सामने दिया गया देखा खोल करके जो लाल चिन्ह जो स्याही का बना हुआ तो लाल स्याही आंखों से आंसुओं की धार आ गिरने लगी और अपनी स्त्री के चरणों पर तो इतनी सौभाग्य थी जो उनको देखा उनको संदेह हो गया था कि संदेह को दूर करने के लिए प्रभु जो वर्षण देन बेन करते हैं यदि वैसा कोई भक्त हो तो हमारे लिए करता है वो तो ऐसा ही हो जाता है दोनों सुख सुख करते ये है मद भक्त भक्ति का ऐसा ही अनुशीलन होना चाहिए ये गीता का तात्पर्य गीता का तात्पर्य कर्म नहीं है कर्म साधारण लोगों के लिए है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं तो उनको वैदिक कर्म जैसा कि शास्त्र में बतलाया गया है करते हुए भक्ति कर और उनसे ऊपर उठ हो जाए तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में ऐसे अनन्य भक्ति करना चाहिए अर्जुन ने कहा प्रभु ये हमसे इस युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा हमारे लिए कुछ और सर्व करके कहिए तब उन्होंने कहा मज्जा जी भगवान हमारा जजन करो पूजा अर्चन तो करो तो वो पूजा अर्चन में तो घी इत्यादि सामान चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, ये सब यजन यज्ञ अथवा अर्चन इत्यादि, यहाँ पर अर्चन इत्यादि से तात्पर्य कोई द्रव्य से लेकर के भगवान का पूजन उनको अर्पण इत्यादि करना है। इस यज्ञ स्थल में धनुष और बाण और ये सब चीजें बच पड़ी हैं, इसमें वैसा भाव मेरे लिए कहां से संभव? प्रभु कुछ और नीचे उतरिए, कुछ मेरे लिए ऐसा कहिए जो मैं करूं। मान नमस्कुरु, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं। एक बार भी यदि कृष्ण को प्रणाम कर दिया फिर उसका जन्म नहीं होता है। कृष्ण का प्रणाम करने वाला कभी भी जगत में नहीं आ सकता, एक बार भी प्रणाम करते। प्रणाम माने क्या? प्रकृष्ट रूप से नमन करता है, न माने अहंकार को दूर भूक करके और भगवान के चरण में सर्वस्व समर्पण करना, ये प्रणाम का तात्पर्य है। एक बार भी यदि ऐसा कोई सब प्रणाम कर दिया अथवा कहते हैं इसका अब एक अर्थ लीजिए, भगवान को प्रणाम करते हुए उनका जजन करते हुए उनमें नौधा भक्ति या चतुर्धा अथवा तीन प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अथवा एक नाम संकीर्तन, ऐसा करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाए और इन कर्मों को भी करें तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का यही सर्वोत्तम स्थान है। यदि हम लोग इनमें से एक को भी या सबको भी सामूहिक रूप में भी यदि ग्रहण कर सके, लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, फिर लौट करके इस जगत में। यही आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रकाश किया। हमारे पूज्य हमारे ये श्रद्धेय स्वामी जी हैं, शास्त्री जी हैं, और हमने से यदि कुछ गलती हुई हो
तो आप लोगों से
पंचायत
हुआ। आज के मुख्य अतिथि वंदनीय स्वामी त्रिवेणी स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ने एक बार राधा तत्व के विचार के लिए मुझे याद किया था और मैं इनके गौड़िया मठ में जाकर मैंने राधा और कृष्ण तत्व की एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे और बताया श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ नहीं है। आप बहुत ही प्रसन्न हुए, आपकी दयालुता, आप श्री राधा तत्व के परम आराधक हैं। अभी इनके शिष्यों में से एक व्यक्ति बोल रहा था सबका तत्व श्याम है और श्याम की आराध्य श्री राधा राजी है। राधा राजी को हम आप समझ नहीं पाए हैं, राधा तत्व बहुत ऊंचा है, इसीलिए राधा तत्व को प्रकट करना नहीं, जैसे अपने मुख्य धन को लोग छिपाते हैं, गोपनीय होता है, अपने धन की चर्चा कोई करना नहीं चाहता, उस प्रकार हमारे वृज तत्व का परम गोपनीय तत्व श्री राधा रानी। विशेष में क्या कहूं, स्व आत्मान भेदा पापयत पतिश्च पत्नी च भवताम, हमारे वृज की आराध्या मुख्य शक्ति श्री राधा रानी ब्रह्मानुनंदिनी किशोरी जी है, यदि उन गौर तेज का की कृपा हो जाए तो श्याम तेज अपने आप हृदय रूढ़ हो जाएगा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। महाराज इधर बरसाना है राधा रानी का तो उधर नंदगाम श्री ठाकुर जी का है और बीच में प्रेम सरोवर है। सच्चा प्रेम तो श्री राधा ने कृष्ण के साथ किया, वह हमारे लौकिक व्यवहार में किसी को माता बना ले या किसी को पिता बना ले, वो तो जगत जननी है। इसलिए चाहे मथुरा में कुब्जा को हम आराध्या बना लें और द्वारका में रुक्मिणी जी को बना लें, परमर श्री राधा तत्व के कोट कोट अंश की बराबर जगत में कोई नहीं। उधर हमारी भक्त भी संत नारायण जी ले गए हमें। अब गीता में हम क्या करें, गीता में केवल एक बात कहके वक्तव्य समाप्त करना। महाराज गीता का प्रारंभ विषाद से हुआ और जो कुछ होगा सो होगा। गीता का शुभारंभ अर्जुन के विषाद से हुआ और जहां विषाद है वहां गीता क्या देती है, विषाद को हटाकर देती है प्रसाद। यानी जो जगत में विषाद से व्यग्र है उसे यदि प्रसाद यानी प्रसन्नता चाहिए, जिसके जीवन में सब कुछ है और प्रसन्नता नहीं तो उसके जीवन में कुछ नहीं। प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसाद में गीता का समापन है और विषाद में गीता का प्रारंभ है। अब शंका ये होती है कि आप श्री ने कहा बिल्कुल अक्षर तो सत्य कि ये मुक्त ही नहीं, अर्जुन महामुक्त है। अर्जुन कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। बद्ध जीव से कृष्ण की चर्चा परचर्चा नहीं हो सकती। यदि अर्जुन भी माया से बंधा हुआ होता तो भगवान उसके साथ संभाषण भी नहीं करते। माया से बद्ध जीवों के साथ प्रभु कभी वार्तालाप नहीं करते। अर्जुन के साथ विषम परिस्थिति में जो इतना गीता की चर्चा की उसका कारण है पांडवानाम धनंजय। और सब बातों में युधिष्ठिर बड़े हैं पर जहां विभूति योग का वर्णन करने लगे वहां बताया पांडवों में अर्जुन में हूं। तो स्वयं अपने आप की चर्चा का नाम गीता है। यह अर्जुन स्वतंत्र नहीं है। ऐसा अर्जुन जो जीवन में कहता था अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं जीवन में कभी दीनता लाऊंगा और न कभी युद्ध से भागूंगा। जिस अर्जुन ने ये दो प्रतिज्ञा की, जिसको जीवन भर उसका निर्वाह किया, आज वह इतना पलायनवाद स्वीकार कर रहा है और भाग रहा है कि क्या बात है। इसका विचार करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और उनके आशय को हमारे तत्वबोधनीकार जो हैं उन्होंने गीता में बताया कि ये विषाद जो है ये विषाद अर्जुन का नहीं है, ये विषाद श्री कृष्ण का दान है। वल्लभाचार्य जी महाराज के आशय को बताते हुए श्री वल्लभलाल जी कहते हैं कि ये विषाद भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को दिया, क्योंकि जब तक मानव को जगत से कुछ विषाद यानी वैराग्य नहीं होता तब तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। हमारे गीता के अध्याय के अंत में क्या आता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी जब तक अर्जुन न बनेगा तब तक उसके साथ ब्रह्म विचार कैसे किया जाएगा। इसलिए यहाँ विषाद को भगवान ने स्वयं दान दिया अर्जुन। अर्जुन भगवान ने जब दिया तो विषाद से क्षीण हो गया, तब भगवान उस विषाद को धीरे धीरे ब्रह्म विद्या से हटा रहे हैं, स्वयं दे रहे हैं, स्वयं हटा रहे हैं। जो कुछ करता कारयिता हरि, करने वाले और कराने वाले भक्ति शास्त्र में भगवान ही हैं। इसलिए ज्ञान का वेदांत अलग है और हमारे भक्ति वेदांत, भक्ति का वेदांत अलग है। यह ज्ञान का वेदांत वो ब्रह्म जो कुछ हो वो ब्रह्म वेदांत ही कहते रहे, हमारे भक्ति का वेदांत तो हमारी गोपी जन कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान के नेत्र नहीं गोपियां कहती हैं, अरे लाख बार अंजन अजायो इन आँखों में। हमने लाखों बार काजल लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों में लगाया, उस सांजन को तुम लोग निरंजन कहते। कैसे हो सकता है जो सांजन है वो निरंजन कैसे हो सकता? आप कहते भगवान के चरण नहीं, हमने गायों को चराते हुए उन्हें देखा, जब भगवान के चरण ही नहीं तो गोचारण लीला कितनी। भगवान के यदि श्री हस्त नहीं है तो श्री गिरिराज किसने उठाया? ये गोपी के अकाट्य के तर्क, श्री गोपिकाओं के अकाट्य के तर्कों के आगे उद्धव जी नमित हो गए, उद्धव जी श्रमित हो गए और श्री जी झुक करके कहने लगे, बंदे नन्न प्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभिकृत यासाम हर कथोद गीतम पुनाती भवन त्रय। मैं नंद बाबा की ब्रज की स्त्रियों के को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्यों कि मैं ज्ञान वेदांती हूँ, मैं भक्ति वेदांती हूँ। महाराज वो उद्धव जी ज्ञान वेदांती थे, उनको भक्ति वेदांत पढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा कि जाइए, भक्ति वेदांत पढ़ना हो तो गोपिकाओं की शरण लीजिए, श्री राधा रानी की शरण जाइए तो आपको भक्ति वेदांत मिलेगा। भक्ति वेदांत का नारायण अलग है और ज्ञान वेदांतियों का नारायण अलग है, ये तीन ही तो आपका शब्द है, भक्ति वेदांत और नारायण। तो महाराज विशेष क्या कहें, बड़ा आनंद है, मन तो ऐसा करता है पूरी रात हमारा आपका चलता रहे, पर व्यवहार तो देखना पड़ता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी इसे बनाने के लिए, इसके लिए कुमति को हटाने के लिए एक छोटी सी बात कह दूं, डेढ़ मिनट की है। अर्जुन से कहा तुम द्रोणाचार्य को बाणों से मारो, अर्जुन से कहा तुम भीष्म पितामह को बाणों से मारो। अब जरा दो मिनट विचार करें आप। तो अर्जुन कहता है महाराज द्रोण मेरा विद्या गुरु है और भीष्म मेरा पूर्वज पुरखा है, ये दोनों तो पूजनीय हैं, जो पुष्पों से पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, नमनीय हैं, उनके लिए हम कैसे बाणों से बाण मारे इनमें? तो हट गए। तो अब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने विचार किया, क्या गुरु को न मारना अर्जुन की कुमति है या सुमति? बस ये कहकर के मैं समाप्त करता हूं। तो लोगों ने, धर्मशास्त्र के अनुयायियों ने एक स्वर से कहा, ये तो अर्जुन की सुमति है, गुरु को न मारना। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने गीता को नहीं समझा, श्रीमद भागवत को नहीं समझा, यहां चाहे गुरु हो और चाहे पूर्वज हो, यहां जो कृष्ण का विरोध कर रहा है उसमें गुरुत्व तो हो ही नहीं सकता। और कृष्ण का विरोध करने वाला कभी पूर्वज बंदनी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बल गुरु तजो कंस ब्रज बंधन भई जग मंगलकारी। कृष्ण के विमुख होने से श्री वल्लभाचार्य जी ने सुमति और सुमति का लक्षण बताया, जो भगवत कीर्षित, भगवत कीर्षित कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवान जो कुछ करना चाहते हैं उसको सहर्ष करने को जो तैयार हो जाता है उसका नाम है सुमति, और भगवान जो करना चाहता है उसका जो जवाब सवाल करने लगता है कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईश्वर प्रत्यामी पूजा रहु अर्जुन। मैं गुरु के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, ये अर्जुन की कुमति है। यहाँ गुरु को न मारना ही कुमति है, क्योंकि तो भगवान उनके आसुरा वेश के कारण उसे मरवाकर दूसरा दिव्य देह देना चाहते। कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहाराणी वासांश जीर्णानी, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इस जर्जरित कलेवर को छोड़कर नवीन देवता देह धारण करने की अभिलाषा कर रहे हैं। इसलिए इनके मनोरथ को अर्जुन तू पूरा कर दे। इसलिए भगवान की बात को न मानना और भीष्म के पद से और द्रोणाचार्य के पद से पलायनवाद किया। भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तू ये क्षुद्र विचार है, तू बड़ा दुर्बल हृदय का है। लोगों ने कहा महाराज अर्जुन को कुमति सिद्ध करना गुरु न मारने से, तो कहा नहीं, जो मर रहे हैं उनसे ही पूछ लो। श्रीमद्वाचार्य महाराज कहते हैं जो मरने वाले हैं उनसे ही पूछ लो। तो भागवत में भीष्म से पूछा कि अर्जुन ने जो तुम पर बाण नहीं छोड़ा, ये अर्जुन की कुमति है या सुमति है? तो अर्जुन भीष्म स्तुति नवमाध्याय, भागवत प्रथम स्कंध नवमाध्याय, भीष्म स्वयं करता है। प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमत महरदात्म विद्यया चरण रति परमस्य तत्समी। सारांश संक्षिप्त में भीष्म पितामह कह रहा है कि जिसको खोटी बुद्धि हो गई, मुझे मारने से भगा यानी खोटी बुद्धि, भगवान मेरा हित चाह रहा है और मुझे इस पांडव कौरवों के जाल जंजाल से छुड़ाकर दिव्य देव देह देना चाह रहा है, भगवान के उस इष्ट को न समझ कर इसने जो मुझ पर बाण नहीं मारे तो कुमति, ये अर्जुन की सबसे खोटी बुद्धि। इसके लिए अहरत आत्मविद्या, गीता का दूसरा नाम है आत्मविद्या। आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति को समाप्त कर और गुरु के मारने के लिए तैयार कर उसको सुमति स्थापित की। तो सिद्धांत गीता का यही है कि कुछ भी हो जागृत राखे श्याम, प्रभु जो करना चाहता है, जो हमारे यहां लगता है नोदना चोदना लक्षणो विधि, जो है वही विधिवाक्य है। वेद जिसको कहे, अरे वेद क्यों भी प्रामाण्य हमारे भक्ति शास्त्र में वेद को प्रमाणित क्यों माना जाता है? वो हमारे श्री बाल कृष्ण की वाणी है, श्वास है, यस्य निश्वसितम् वेदाः। यदि भगवान का वो श्वास नहीं होता तो प्रामाण्य नहीं आता। जब भगवान के श्वास में इतना प्रामाण्य वेद में, तो भगवान या वैखरी भाषा से अर्जुन से कह रहा है, क्या कृष्ण वाणी से भी ज्यादा किसी की वाणी हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि मया हताम स्वम जहि महाव्यथिष्ठा। सब जगह परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, व्यापार कर लेने के बाद लाभांश मिलता है। और यहाँ देखिए एक श्लोक में झांकी करके समाप्त कर दूंगा भाई, नहीं तो बात तो बहुत है, अरे होली पर मिलेंगे हम तो। भीष्मंच द्रोणं च जयद्रथं च करणं तथान्यानपि योधुवीरान् मया हताम्। स्पष्ट कह दिया त्वं जहि मां व्यथिष्ठा, युद्ध ह्यस्व चेतासि रणे सवत्नान। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र दे दिए। भगवान कहते हैं भीष्मंच साधारण द्रोणंच जयद्रथंच कर्णम तथान्यान योधवीरान। बड़े बड़े जो वीर यहां खड़े थे, मया हतान, मैंने सबको मार डाला है, ये मरे हुए हैं, केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरे इशारे की, तेरा इशारा बाण का लगा के गिर पड़ेंगे। तो विचार करो, भगवान का निर्धारित जो कार्य है, जो भगवान इच्छा करते हैं, उसमें जो सहाय करती है, इसलिए केकई को कुमति बताने वाला वही अज्ञ है जिसने साधु सभा नहीं की, जिसने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वो केकई को कुमति बता सकता है। केकई तो निमित्त बनी है भगवान के कार्य करने में, केकई महाभागा है, केकई वंदनीय चरणा है, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य करने में अपन जघन्य गालियां सहती हुई भी भगवत कार्य के लिए तैयार है। इसलिए भगवत को कार्य करके संपादन करने वाला जो ये अर्जुन है, इसको आत्मविद्या गीता के द्वारा ही उन्होंने इसको मति को निवारण किया और एक ही कहा, और कुछ आप पर हो या न हो,